हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जंगल में अंकुश के शिवांशा के साथ कुछ बुरा करने से पहले ही वेद वहां पहुंच गया था। वेद के सामने अंकुश की एक नहीं चली, उसे शिवांशा को वहीं वेद के पास छोड़कर जाना पड़ा। वेद भी शिवांशा को बचाने के इरादे से ही वहां आया था। वो उसे लेकर वहां से जाने लगा। आज वेद का जन्मदिन था और वो आज के दिन किसी की जान नहीं लेना चाहता था। 12 बजने में थोड़ा ही समय बाकी था, तो शिवांशा ने अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर वेद को उसे राजावत हाउस ले जाने के लिए कहा। राजावत हाउस में ऐसा कुछ था जिसके चलते शिवांशा वहां से जा नहीं सकती थी। वहीं दूसरी तरफ अंकुश ने राजावत हाउस से थोड़ा पहले ही वेद से शिवांशा को फिर से हासिल करने का इंतजाम कर रखा था। जैसे ही वेद की गाड़ी राजावत हाउस से थोड़ा पहले पहुंची, उन्होंने देखा कि गाड़ी के सामने अचानक बहुत लोग आ गए थे। मजबूरी में प्रतीक को ब्रेक लगाना पड़ा। वेद ने पार्टीशन हटाया और प्रतीक से पूछा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? भाई, आगे मीडिया वाले खड़े हैं, हम यहाँ बिना गार्ड के आए थे। अचानक इनका सामना आना मुझे अजीब लग रहा है। ये लड़की भी हमारे साथ है, प्रतीक ने चिंतित स्वर में कहा। वेद ने गहरी सांस ली और फिर कुछ पल रुककर कहा, ऐसा करो, बाहर जाकर उनसे बात करके आओ। आज किसी तरह का मीडिया इंटरैक्शन नहीं होने वाला था, फिर ये लोग अचानक हमारे सामने क्यों आए हैं? मैं जाकर पता करता हूँ, प्रतीक बोला और गाड़ी से बाहर आया। जैसे ही प्रतीक बाहर आया, उसने देखा कि मीडिया वालों के साथ अंकुश भी था। वो समझ गया था कि ये अंकुश की कोई चाल है। प्रतीक के बाहर आते ही रिपोर्टर्स की भीड़ आगे बढ़ी और उसे घेर लिया। मिस्टर राजपूत, हमें पता चला है कि वेद सिंह चौहान इस वक्त गाड़ी के अंदर हैं। उनके साथ एक लड़की है जिन्हें उन्होंने किडनैप किया है, एक रिपोर्टर आगे आकर बोला। प्रतीक ने सबकी तरफ देखा और जवाब में कहा, आप जानते हैं ना कि आप किस पर क्या सवाल खड़े कर रहे हैं? वेद सिंह चौहान और किसी का किडनैप करेंगे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वेद सिंह चौहान कौन था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। रिपोर्टर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगते हुए कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। एक्चुअली मुझे पता चला है कि मिस्टर चौहान किसी लड़की के साथ हैं। जहां तक हमें पता है वो सिंगल हैं। फिर वो लड़की कौन है जिसके साथ वो बिना सिक्योरिटी के इस तरह अकेले जा रहे हैं? रिपोर्टर के तुरंत सवाल बदलने पर अंकुश को बहुत गुस्सा आया। उसने यही प्लान किया था कि वो सबके सामने ये साबित कर देगा कि वेद शिवांशा को किडनैप करके ले जा रहा है। ऐसे में वेद को शिवांशा को उन्हें देना पड़ेगा और साथ ही मीडिया के जरिए उसकी अच्छी खासी बेइज्जती भी हो जाएगी। वेद सिंह चौहान कैसा इंसान था ये सब जानते थे। ऐसे में किडनैपिंग जैसा इल्ज़ाम पूरी तरह बेबुनियाद लग रहा था। प्रतीक ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आप क्या उनके रिश्तेदार हैं जो वो आपको इस बात का जवाब देंगे कि उनकी गाड़ी में इस वक्त कौन है और वो उनकी क्या लगती है? मुझे समझ नहीं आता, आप लोग ऐसे बीच में आकर हमारा रास्ता कैसे रोक सकते हैं? लगता है आप वेद सिंह चौहान को नहीं जानते हैं। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। प्रतीक अपनी तरफ से मामला संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वेद को किसी तरह की मुसीबत का सामना न करना पड़े। रिपोर्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। उनके पास कोई सबूत नहीं था, बस एक कॉल आया था और उसके दम पर उन्होंने बेवजह वेद का रास्ता रोक दिया था। अंकुश का प्लांट उल्टा पड़ता नजर आ रहा था। वो जल्दी से आगे आया और उन सबसे बोला, मैं ही वो शख्स हूँ जिसने आपको कॉल किया था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस वक्त वेद की गाड़ी में एक लड़की है जो दुल्हन के वेश में है। वो उसे किडनैप करके ले जा रहा है। मैं बस उस लड़की को बचाना चाहता हूँ, अंकुश की बात का जवाब देते हुए प्रतीक ने तेज आवाज में कहा। अच्छा, तो रिपोर्टर्स अब पुलिस वाले हो गए हैं। अगर आपको इस तरह का कोई डाउट था मिस्टर राजावत, तो आपको पुलिस को कॉल करना चाहिए था। वो मैं पुलिस को कॉल नहीं कर पाया। हमने अपने घर की शादी के लिए मीडिया को बुलाया था, तो सोचा जल्दबाजी में जो मिले वही सही, अंकुश ने बहाना बनाया। वो इस मामले में किसी भी हाल में पुलिस की मदद नहीं ले सकता था। अगर गलती से भी तेजेंद्र को पता चलता कि अंकुश शिवांशा को मारने के बजाय उसका रेप करने की कोशिश कर रहा था, तो वो पहले उसकी जान ले लेता। ऊपर से पुलिस के इन्वॉल्वमेंट से वो मुसीबत में पड़ सकता था। प्रतीक को थोड़ा अफसोस हो रहा था। वो यही सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले मौका मिलने पर उसे अंकुश को गोली मार देनी चाहिए थी, पर मीडिया के सामने वो कुछ भी ऐसा रिएक्ट नहीं कर सकता था जिसकी वजह से वो मुसीबत में आ जाए। प्रतीक ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अंकुश से कहा, लोग अगर आपकी थ्योरी के हिसाब से चलने लगे तो आगे से कभी मर्डर या कोई क्राइम होगा तो पुलिस से पहले मीडिया को बुलाया जाएगा। मिस्टर चौहान, आप में से किसी भी इंसान के सवाल का जवाब देने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो अपनी गाड़ी से बाहर क्यों नहीं आ जाते? मीडिया वालों को अपनी गाड़ी दिखा दें, फिर हम मान जाएंगे कि आपके मिस्टर वेद सिंह चौहान सच्चे हैं और मैं झूठ बोल रहा हूँ, अंकुश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। प्रतीक ने एक नज़र मीडिया वालों की तरफ देखा जो सवालिया नज़रों से गाड़ी को घूर रहे थे। प्रतीक कॉल के जरिए वेद से जुड़ा हुआ था और वो अंदर से बाहर की सारी बातें सुन रहा था। अंकुश जो भी कर रहा था उसे देखकर शिवांशा के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए थे। किस्मत ने उसके साथ अजीब खेल खेला था। वो वेद के साथ जाती तब भी उसका मरना तय था, और अगर अंकुश के साथ जाती तो वो उसे मारने से पहले अपनी हवस पूरी किए बिना बिल्कुल नहीं छोड़ता। प्रतीक उन्हें संभाल रहा था, तभी कुछ मीडिया वाले कैमरा लेकर गाड़ी के दरवाजे के पास आ गए। उनमें से एक ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, बाहर आइए मिस्टर चौहान, क्या सच में आप किसी लड़की के साथ हैं? अगर ऐसा है तो वो लड़की कौन है? क्या आपने इसे किडनैप किया है? अंकुश ने जैसा प्लान किया था वैसा ही हुआ था। मीडिया वाले वेद पर सवाल खड़े करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ अरमान पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही उसने नाइट ड्यूटी पर मौजूद सीनियर इंस्पेक्टर से कहा, मुझे मिस्टर वेद सिंह चौहान के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है, उन्होंने मेरे भाई की होने वाली पत्नी को किडनैप किया है। सीनियर इंस्पेक्टर ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। उसने सिर हिलाकर कहा, आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप यहाँ वेद सिंह चौहान का नाम ले रहे हैं। पूरा उदयपुर जानता है कि वो कौन है। एक बिजनेसमैन होने के अलावा एक इंसान के तौर पर भी सब उनके एग्जाम्पल देते हैं, और आप उन पर किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप उनके घर पर जाकर तलाशी ले सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ उस लड़की को बचा लीजिए, वेद सिंह चौहान उसे मार देगा, अरमान ने प्लीडिंग वॉइस में कहा। इंस्पेक्टर को लगा कि वो कोई ऐसा ही सिरफिरा आदमी है जो वेद का दुश्मन होने की वजह से उस पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रहा है। इंस्पेक्टर उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। उसने अरमान को बैठने का इशारा किया लेकिन वो फिर भी खड़ा था। इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, तो आपकी होने वाली भाभी का किडनैप हुआ है और आपको लगता है कि उसे वेद सिंह चौहान ने किडनैप किया है? उन्हें गायब हुए कितना समय हुआ है? यही कोई 3 से 4 घंटे, अरमान ने जवाब दिया। 24 घंटे से पहले हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके भाई से शादी करके खुश न हो इसलिए किसी और के साथ चली गई होगी। बाकी मुझे नहीं पता कि आप इस मामले में मिस्टर चौहान को क्यों घसीट रहे हैं, इंस्पेक्टर ने बेपरवाही से जवाब दिया, जिस पर अरमान को गुस्सा आ गया।
अरमान ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, कितने पैसे मिले हैं तुम्हें इस केस को दबाने के लिए? उसके लिए काम करते हो ना तुम? देखिए, अब आप हम पर बेफिजूल के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है कि मिस्टर चौहान ने ही आपकी भाभी को किडनैप किया है? आप ऐसे कैसे एक इज्जतदार इंसान पर बिना सबूत के इल्ज़ाम लगा सकते हैं? इंस्पेक्टर ने खड़े होकर तेज आवाज में कहा। वही तो मैं कहना चाहता हूँ, जब तक आप जाकर पता नहीं लगाएंगे तो सबूत कहाँ से मिलेगा? मुझे मेरे भाई का कॉल आया था, उसने खुद अपनी आंखों से मिस्टर चौहान को शिवांशा को ले जाते हुए देखा था, अरमान ने अपने गुस्से को काबू करके कहा। ऐसे में तो आपके भाई पर भी सवाल खड़े होते हैं कि उनकी आंखों के सामने उनके घर की होने वाली बहू को कोई उठाकर ले गया और वो चुपचाप खड़े होकर देखते रहे। मुझे आपके भाई का स्टेटमेंट चाहिए, क्या मिस्टर चौहान ने उन्हें किसी तरह की चोट पहुंचाने की कोशिश की? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बात को समझाए। वो इंस्पेक्टर को पूरी बात भी नहीं बता सकता था कि अंकुश शिवांशा को मारने के लिए लेकर गया था। ऐसे में वो एक बार के लिए खुद कंफ्यूज हो गया कि वेद सिंह चौहान शिवांशा को बचाने वाला शख्स है या फिर उसे मारने वाला। अरमान कंफ्यूजन में खड़ा हुआ था, तभी किसी ने पुलिस स्टेशन में टीवी की आवाज तेज की। इसी के साथ उन सबका ध्यान वहां चला गया। टीवी में वही न्यूज आ रही थी जहां मीडिया वालों ने वेद की गाड़ी को रोका था। हेडलाइंस भी अंकुश की भाषा बोल रही थीं। उन्हें तो टीआरपी से मतलब था, इसलिए वो यही दिखा रहे थे कि वेद ने किसी लड़की को किडनैप कर लिया है। न्यूज देखते ही अरमान ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा, अब तो आपको मेरी बात पर यकीन आ गया होगा कि मैं हवा में किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। आप जैसे लोगों की वजह से ऐसे अमीर लोग गुनाह करके छुपे रहते हैं। क्या अभी भी आपको किसी तरह के सबूत की जरूरत है इंस्पेक्टर, या मेरे साथ चलिए? इंस्पेक्टर की नजरें नीचे हो गई थीं, तभी लाइव न्यूज में वेद शिवांशा के साथ गाड़ी से बाहर निकलकर आया। हर कोई देखकर हैरान था। वेद सिंह चौहान, जो हमेशा सब जगह अकेले दिखता था, वो आज किसी लड़की के साथ था। ऐसा नहीं था कि वेद को शादी के लिए प्रपोजल नहीं मिलते थे या कोई लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, बस वेद को ही शादी में इंटरेस्ट नहीं था। एक पब्लिक फिगर होने की वजह से वेद के बारे में ज्यादातर लोग जानते थे। उसे किसी लड़की के साथ देखकर वे हैरान रह गए। मीडिया वाले दौड़कर उनके आगे आ गए। शिवांशा की नजरें झुकी हुई थीं, जबकि वेद ने मजबूरी में उसके पीछे ऐसे हाथ रखा था जिससे सबको वेद का हाथ शिवांशा की पीठ पर है, जबकि असल में वेद और शिवांशा के बीच एक उचित दूरी थी। वहीं उस जगह पर अंकुश शिवांशा को देखकर जल्दी से आगे आया और बोला, ये वही लड़की है, देखो मैं सच बोल रहा था, ये इसे किडनैप करके ले जा रहा है, पूछो इससे ये लड़की कौन है और इसके साथ क्या कर रही है। अंकुश खुद किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर अपना और शिवांशा का रिश्ता छुपा रहा था। वहीं उसका ये बर्ताव देखकर शिवांशा हैरान रह गई। मीडिया वाले वेद के सामने माइक लेकर खड़े थे। इस वक्त वे सारे एक साथ एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर शिवांशा कौन है और वो दुल्हन के जोड़े में वेद के साथ क्या कर रही थी। क्या सच में वेद उसे किडनैप करके ले जा रहा था? मामला मीडिया के सामने आ गया था, ऐसे में वेद एक तरह से फंस गया था। अगर वो आज शिवांशा को जाने देता तो वो कभी अंकुश तक नहीं पहुंच पाता और उसका बदला अधूरा रह जाता। वेद ने गहरी सांस ली और सबको हाथ उठाकर शांत रहने का इशारा किया। फिर उसने एक नज़र शिवांशा की तरफ देखा और मीडिया वालों के सवाल का जवाब देते हुए गहरी आवाज में कहा, ये मेरी पत्नी है, शिवांशा वेद सिंह चौहान।